Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Brahmaji ki daadi safed hai ki kaale hai? आप लोगों ने क्या देखा है ब्रह्मा जी की दाढ़ी को? सफेद देखा है कि काले? सफेद है। उनके पास ये आजकल वो गया नहीं लगता है, वो होता है ना केमिकल्स, काला रंग है? वो शायद ब्रह्मलोक में होगा, वहां कोई धीरू भाई वगैरह पहुंचे नहीं होंगे ना, अंबानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, ये लोग वहां ब्रह्मलोक में पहुंचेंगे तो सबसे पहले ब्रह्मा की दाढ़ी देखकर उसी के लिए फैक्ट्री शुरू करेंगे, है? क्योंकि जहां जो देखते हैं कि हां यहां इसकी आवश्यकता है, तुरंत मार्केटिंग करने लग जाएंगे। तो जाने दो भाई, ब्रह्मा जी कहने लगे, विष्णु कहने लगे, अरे मूर्ख, तू मेरा बेटा है और मैं मेरा अभिवादन करता नहीं और खड़ा है, कौन ज्येष्ठ कौन श्रेष्ठ, सबसे बड़ा कौन है? इस प्रकार का जब विवाद शुरू हो गया तो वहीं भगवान शिव अपने एक सगुण निराकार रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। ये पुराण शिव पुराण की कथा है। अब उसके आदि और अंत का पता लगाने के लिए, शिव दर्शन करने के लिए विष्णु सुअर का रूप, सुअर होता है सड़कों में, गांव में, भूंड गुजराती में बोलते हैं, है? उसका रूप धारण, बराहा रूप, और क्या है, वही तो है। बराहा कह देंगे तो जरा अच्छा लगेगा, सुअर कहेंगे बुरा लगेगा, जाति एक ही है, है? तो पृथ्वी को खोजने का काम बराहा का भी है, सुअर का भी है। सू सू करोति इति सुकरा, और पृथ्वी गंधवती है, और इसीलिए सुअर के नाक बड़ी है, क्योंकि नाक गंधक ग्रहण करने में समर्थ है, इसलिए सू सू करते हुए पृथ्वी को खोजते हुए पाताल में चले गए थे वराह भगवान, है ना? तो पाताल में कहां से शुरू हुआ है भगवान शिव का वो, तो उसका पता लगाने के लिए मृग, है ना, पशु का रूप धारण करके नीचे चले गए। और ब्रह्मा जी लास्ट में कहां पहुंचा है इसका पता लगाने के लिए पक्षित्व, पक्षी का रूप धारण करके वहां ऊपर की ओर चले गए। हरिंजीर हरिराधा बिरिंचो हरिराधा, तदुपरि बिरिंचो हरिराधा, महिमने स्त्रोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने संकेत किया, तदुपरि बिरिंची हरि ही अधा। पुनश्च त्वं द्रष्टुं दिवि भूवि वहन पक्षि मृगतां अदृष्ट्वा, फिर भी आपके दर्शन कर न पाने का परिणाम यह हुआ कि दोनों आकर खिन्न होकर बैठे, हा? भगवान के शिव के दर्शन करने के लिए पशु भी बने, पक्षी भी बने, विष्णु भी बने, ब्रह्मा भी बने, फिर भी आपके दर्शन कर न पाने के कारण खिन्न होकर बैठे। तब उसी ज्योतिर्लिंग से भगवान शिव प्रकट होकर सगुण साकार के रूप में विष्णु और ब्रह्मा जी को कहा कि तुम लोग घमंड में पड़े हो, हाँ, यहां कोई ज्येष्ठ नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, हाँ, तो तुम अपना घमंड छोड़ो, अभिमान छोड़ो, और तुम्हें किस कर्तव्य कर्म के लिए तुमको ब्रह्मा बनाया है, तुम्हें किस कर्तव्य कर्म के लिए विष्णु बनाया है, अपने कर्तव्य कर्म का स्मरण करके कर्तव्य कर्म नित्य करते रहो। महाराज, आपने जो कर्म हमारे लिए विधान किया है उसमें बड़ा वैषम्यता है ना, बड़ा वैषम्यता है। क्या वैषम्यता है? ब्रह्मा को कहा, क्या वैषम्यता है? ब्रह्मा ने कहा, महाराज यही है, सृष्टि करना है, जीवों की सृष्टि करनी है, किसी को ब्राह्मण बनाना पड़ता है, किसी को क्षत्रिय बना देना पड़ता है, किसी को वैश्य बनाना पड़ता है, किसी को शूद्र बनाना पड़ता है, किसी को गाय बनाना पड़ता है, किसी को भैंस बनाना पड़ता है, किसी को कुत्ता बनाना पड़ता है, किसी को सुअर बनाना पड़ता है, किसी को कृमि मकोड़े बनाना पड़ता है, किसी को राजा बनाना पड़ता है, महाराज यही वैषम्यता है सृष्टि में, और मेरे सृष्टि में इस तरह की वैषम्यता, मैं ये करना नहीं चाहता हूं लेकिन करना पड़ता है, तो ये विषम सृष्टि करने का दोष मुझे लगता है लगेगा, इस डर के मारे मुझे सृष्टि करना अच्छा नहीं लगता है। भगवान शिव ने कहा कि बेटा ये जो सृष्टि में विषमता है वो तुम्हारी रचना से विषमता नहीं हुई है, ये तुम समझ नहीं रहे हो। मैं सृष्टि कर रहा हूं और मैं विषम रचना कर रहा हूं करके तो कर्तृत्व बुद्धि तुम्हारे में है, इसलिए तुम्हारे सामने ये समस्या आई है। ये विषमता ये तुम्हारी सृष्टि तुम्हारी रचना से ये विषमता हुई है, ऐसा नहीं है। फिर कैसे महाराज? बोले हर जीव की अपने अपने प्रारब्ध से ये विषमता तैयार हुई है। हाँ, अपने अपने प्रारब्ध भोगने के लिए तद अनुकूलत उसको शरीर आदि बनाकर तुम दे रहे हो, उनका प्रारब्ध नहीं होगा तो तुमसे शरीर मांगने ही नहीं आएंगे। हैं? उनका प्रारब्ध नहीं होगा, यदि ब्रह्म विचार करते हुए उनका सारा का सारा क्रियमाण और संचित कर्म को नष्ट कर देंगे, शंकराचार्य जी जो बात कह रहे हैं प्राक कर्म प्रविलाप्यताम चिति बलात् नाप्युत्तर श्लिष्यताम प्रारब्धस्तु यह भुज्यताम, और प्रारब्ध कर्म भोग करके जो जीवात्मा निकल जाता है वो दोबारे तुम्हारे पास शरीर मांगने नहीं आएगा। आएगा है? आएगा वो जीव? कौन जीव आएगा ब्रह्मा के पास शरीर मांगने के लिए? कौन जीव जाएगा? जिसने ज्ञान के बल से संचित कर्म को नाश नहीं किया और असंगता अकर्ता भाव से क्रियमाण कर्म को छोड़ा नहीं, संचित कर्म भी यथावत है क्रियमाण कर्म भी किया जा रहा है, और प्रारब्ध भोगते समय में प्रारब्ध भोग दृष्टि न रखकर भोक्ता भाव और कर्ता भाव अभिनिवेश करते आए, वो व्यक्ति मरने के बाद फिर तुम्हारे पास उन्हीं कर्मों के चलते फिर शरीर मांगने के लिए आएगा, तुम्हें उसके अनुकूल कर्म के अनुकूल शरीर बनाकर देना पड़ता है। तुमको ये भ्रांति हुई है कि मैं शरीर बनाकर दे रहा हूं, तुम क्या दोगे बेटा? भगवान शिव ने वहीं ब्रह्मा जी को तत्व का उपदेश करना आरंभ कर दिया, तुम अकर्ता भाव से कर्म करो तो वैषम्यता सृष्टि का दोष तुमको नहीं लगेगा। अब इधर विष्णु के बारे में वो भी कहने लगे, महाराज मुझे पालन करने का जिम्मा आपने दिया, पालन करने में भी विषमता होती है, हमको विषम करना पड़ता है, क्या करें महाराज? बोले विषम क्या करते हो तुम? बोले देखो ना महाराज, हापुस आम का सीजन आ गया, बम्बई में सब रोज रोज दो दो चार चार हापुस आम रस निकाल निकाल कर रस पूरी खा रहे हैं, बेचारे वो गांव में झोपड़े में रहने वाला वो छिलका भी नहीं पा रहा है, वो खिलाने का काम मेरा है, मुझे अपने खिलाने की जिम्मेवारी दी, हापुस आम मैंने बनाया, लेकिन कहीं पहुंचता है कहीं नहीं पहुंचता, कोई खा पाते हैं कोई खा नहीं पाते, और जिसको खाने को नहीं मिलता है वो मुझे गाली करता है, हैं? जिसके पास पहले से विद्यमान है उसको और देता है, जिसके पास है नहीं उसको फिर दोबारा देने की चेष्टा ही नहीं करता है। कहते हैं ना कि समुद्र में ही बारिश ज्यादा होती है ना? अब परमात्मा भी तो ये करता है ना, जहां पहले से समृद्धि है उन्हीं को और समृद्धि बढ़ाता जा रहा है, उनका बैंक बैलेंस और बढ़ता जा रहा है, और बेचारे जो गरीब है वो दिन भर मजदूरी करते हैं, वो थोड़ा बढ़ाएंगे तो उसकी बुद्धि ऐसे बिगाड़ देता है कि बैलेंस बढ़ाने की तो बात छोड़ दो, रात को दारू पीकर माइनस कर लेते हैं। अब बुद्धि देने वाला कौन है? वही तो है व्यवस्था, वो करता है, पालन करने की जिम्मा उसकी है, और फिर भी इस प्रकार की विषमता सृष्टि में दिख रहा है कि नहीं? जब वही पालन करता है तो सबके सामने हापुस पहुंच जाए, सबके सामने खीरपुड़ी पहुंच जाए, ये व्यवस्था क्यों नहीं कर सकता है वो? तो अरे विष्णु, ये भी वही थ्योरी है, प्रारब्ध है, जिसका प्रारब्ध है बम्बई में आएगा, बम्बई का बेटा बन के पैदा होगा, और जिसका खूब भोगने का प्रारब्ध है और जिसका रोने का प्रारब्ध है किसी गांव में किसी भिखारी का बेटा बनकर पैदा होगा तो उसको रोना ही नसीब है, और तुम उसको क्या करोगे भाई? तुम्हारे क्या हाथ में है? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है बेटा, तुम कर्ता क्यों बन गए? तुम व्यवस्था कर्ता बन जाओ, कर्ता नहीं तो असंग हो तुम। सब अपने अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं, प्रारब्ध का व्यवस्था कर्ता हो तुम। इस प्रकार से असंगता होते हुए कर्तव्य बुद्धि से कर्म करोगे तो पालन करने में जो विषमता दिखती है उसका दोष तुमको नहीं लगेगा, और सृष्टि करने में जो विषमता दिखता है वह तुमको वो दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मा और विष्णु को इस तरह भगवान शिव ने समझाया। परंतु पहले तो शिव भगवान आपके दर्शन के लिए वो लोगों को क्या क्या पापड़ बेलना नहीं पड़ा, बोलो है? करोमि त्वत्पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो विदित्तं विष्णुत्वं दिशति खलु तस्य फलमिति। यदि आप प्रसन्न होकर मुझे इंद्र बना देंगे तो इंद्र की अवस्था भी हमने उपनिषद में पढ़ ली है, केनो उपनिषद में आप लोगों ने पढ़ा है। इंद्रियों को, अध्यात्म के जो देवता हैं इंद्रियों को परस्पर घमंड हो गया, चक्षु इंद्रियों को यह अभिमान हो गया कि इस शरीर में मैं हूं, इसलिए सब देख रहा हूं, इसलिए सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, यदि मैं न रहूं तो सब गड्ढे में गिर जाएंगे और मर जाएंगे, इस शरीर में मेरी सबसे बड़ी भूमिका है, इसलिए मैं तुम लोगों से ज्येष्ठ हूं, चक्षु इंद्रिय ने कहा। और तुरंत फिर कान ने कहा, श्रोत्रेन्द्र ने कहा कि नहीं नहीं मैं सबसे बड़ा हूं, मैं हूं तो सब सुन पाता हूं और मेरे सुनने से सबका व्यवहार आराम से हो सकता है। फिर उसके बाद रसन इंद्रिय ने कहा कि अरे तुम दोनों बेकार के हो, तुम्हारे न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस शरीर में यदि मैं न हूं तो कोई खा ही नहीं पाएगा, और खा ही नहीं पाएगा तो जिएगा कैसे, जिएगा नहीं तो मर जाएगा, तुम्हारा क्या मत, मैं अब तो मेरा है, है? अब पांव ने कहा कि अरे सबसे बड़ा मैं हूं, पूरे शरीर को तुम लोगों के सहित मैं लेकर ढोता घूमता फिरता हूं, मुझे सबसे बड़ा मानो। इंद्रियां परस्पर घमंड करने लग गए, अभिमान करने लग गए और जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हम लोगों में से कौन बड़ा है आप बता दो। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं यदि कुछ कहूंगा तो कल ये लोग अपने पक्ष में निर्णय ना आने के कारण मुझे भी गाली देना शुरू करेंगे। करते ना राजनेता लोग, पहले चुनाव आयोग के हिसाब से चुनाव में लग जाते हैं और जब हार जाते हैं तो घपला किया कहते हैं, चुनाव आयोग के विरोध में ही नोटिस जारी कर देते हैं, है? चुनाव ठीक से नहीं करा ले जी, और जो जीत जाता है वो कंप्लेन करने जाता है चुनाव आयोग के। अरे भाई दोनों तो जीत नहीं सकते हैं ना, चार कैंडिडेट होंगे तो जीतेगा तो एक ना, है? अब इसको हार जीत का खेल मानकर चार में से एक जीतेगा वो जीत गया, खत्म हो गया, स्वीकार कर लो। वो स्वीकार नहीं करेगा, अपने जीतेगा तो स्वीकार कर जाएगा, नहीं तो नहीं जीतेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि किसी के पक्ष में बोल देना ठीक नहीं है। बोले ऐसा करो, तुम लोग इस शरीर से कुछ दिन के लिए बारी बारी से निकल जाना, और जिसके न रहने पर शरीर नष्ट हो जाए वो बड़ा है, बस है? तब जाकर आंख चली गई एक साल के लिए, यहां तो ऐसा नहीं होता है, गई तो गई, कभी कभी आ जाती है, वो कुलीन कोठारी जी ला देते हैं। हाँ, गई एक साल के लिए। उसने सोचा था कि अब मेरे न रहने पर ये लोग दुखी होंगे, अब मेरे जाते ही मेरे का खूब सम्मान करेंगे, मैं बड़ा हूं। लेकिन एक साल के बाद लौटकर आया तो किसी ने पूछा ही नहीं, मेरे न रहने पर तुम लोग कैसे रहे? बोले जय रहे आराम से भाई, तुम्हारे न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंख न होने से किसी के हाथ कान में चला जाता है खाने खाते समय, है? मुख में ही जाएगा आंख न हो तो भी, है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब सारे इंद्रियों का घमंड खत्म हो गया, तब प्राण ने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं, तब उनको विश्वास ही नहीं हुआ। केन उपनिषद का प्रसंग है, विश्वास ही नहीं हुआ, तू कहां से बड़ा हो गया भाई? बोले अच्छा तुम मेरे कहने नहीं मानते हो तो मैं भी एक साल के लिए चला जाऊं, है? चले जा चले जा। सब लोगों ने कहा। जब वो जाने की तैयारी करने लगा तो शरीर में स्पंदन हो गया, घबराहट हो गई, मानो कि अब शरीर खड़ा भी नहीं रह सकता है। जैसे भूकंप आ जाने पर प्राणी घबरा जाते हैं, उसी तरह प्राण जब निकलने की तैयारी की तो इतने में शरीर में सारे इंद्रियां शिथिल हो गए, तो तुरंत प्रार्थना करने लगे कि हे प्राण देवता तुम ही ज्येष्ठ हो। इंद्र की अवस्था उपनिषद में ऐसी है कि जहां ये देवता आपस में झगड़ा करने लगे तो थोड़ी दूर में एक यक्ष प्रकट हुआ। वो यक्ष और कोई नहीं, भगवान शिव ही है। यक्ष के रूप में भगवान शिव वहां प्रकट हुए। वो कौन है, क्या है, पता लगाओ। तो पता लगा के जाओ तो अग्नि दौड़ते हुए गया पता लगाने के लिए। तो अग्नि पहुंच गया यक्ष के पास और यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो। मैं जातवेद हूं, मैं अग्नि हूं, जातवेद हूं। क्या काम है, क्या करते हो तुम। बोले मैं चाहूं तो सबको जलाकर राख बना सकता हूं, मेरे में यह पुरुषार्थता है और इस सभी देवताओं में मैं बड़ा हूं। लेकिन ये और देवता मेरे इस बड़ेपन को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। यक्ष ने एक तीन का दे दिया कि अच्छा सबको राख कर सकते हो, इसको भी राख कर दो। अग्नि ने जोर लगाकर उसको राख करने की कोशिश की, राख की तो बात छोड़ दो, गरम भी नहीं कर पाया। ये तो परमात्मा का संकल्प है। अग्नि क्या, भयाद दस्याद अग्निस्तपति भयास्तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावति पंचमा। उस परमात्मा के अनुशासन में अनुशासित होकर ही अग्नि तप रही है। और क्या मजाल है कि परमात्मा के सामने वह कुछ उद्दंडता कर सके। जब उस त्रिने को वह गर्म ही नहीं कर सका तो यक्ष ने कहा कि खामो खाम क्यों घमंड कर रहा था कि सब मैं जलाकर राख कर देता हूं, एक छोटे से त्रिने को तो गर्म भी नहीं कर सका, जा। बेचारा अग्नि सिर झुकाते हुए आ गया अभिमान चूर। फिर उसके बाद वायु पहुंचा यक्ष के पास। वायु ने कहा, यक्ष ने पूछा वायु से, कोसी तुम कौन हो। मातरिश्व अंतरिक्ष में विचरण करना मेरा काम है। अच्छा तुम्हारा नाम मातरिश्व है तो काम क्या है। बोले मैं चाहूं तो सारे पृथ्वी को धूल में परिणत करके उड़ा के अनंत परमाणु में बदल सकता हूं, इतनी ताकत है मुझ में। कभी कभी दिखता है ना, बाबा जोड़ो आता है ना, कभी दिखता कि हाँ लगता है ताकत है, बाबा जोड़ो गुजराती में बोलते हैं साइक्लोन है। अच्छा तुम्हारे में इतनी ताकत है। बोले हाँ। तो उसके सामने भी वो त्रिण क्षण रख दिया, बोलो इसको जरा से स्पंदित करो, उड़ाओ। लगाया जोर तो कहां उड़ाने की तो बात, थोड़ा स्पंद भी नहीं कर सका। बोले जा तू भी जा। ऐसे ही घमंड करते हो तुम लोग। लौट कर आया तो क्या है, बोले पता नहीं क्या है, विचित्र है वो। तो इंद्र ने कहा कि अब मैं जाता हूं पता लगाता हूं, तुम लोग क्या पता लगाओगे। इंद्र गया तो इंद्र पहुंचने से पहले एक से गायब। इंद्र को भी दर्शन करने को नहीं मिला। भाई तुम इंद्र बना दोगे तो तुम्हारी पूजा से तुम प्रसन्न होके मुझे इंद्र बना दोगे तो इंद्र बनकर फायदा क्या हुआ, आपके दर्शन तक नहीं हो पाया। तड़प रहा है वो, चटपटा रहा है। आकाशवाणी हुई कि अरे मैं उमा ब्रह्म विद्या हैमवतीम उमाम, केन उपनिषद का प्रसंग है। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ही मैं हूं और तुम लोग खाली घमंड कर रहे हो। तुझे यक्ष के रूप में भी दर्शन न होने में कारण यह है कि तू सबसे ज्यादा घमंडी है, अहंकारी है। उनको तो यक्ष के रूप में कम से कम दर्शन तो मिला, तुझे तो वो भी नहीं मिला। क्यों, तो उनसे भी ज्यादा घमंडी है तू। इसलिए अहंकार छोड़ो तब जाके दर्शन होगा। तो शंकराचार्य जी भगवान शिव से कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, न इंद्रपद, न विष्णुपद, न ब्रह्मापद, न पुनः जीव पद, मुझे तो बस केवल सपद ही सुख था, तुरंत सुख। ये तो ज्ञान में ही संभव है, मोक्ष में ही संभव है, हाँ, और कोई उपाय से वो संभव नहीं है। करोमि तत्पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो विदित्वं विष्णुत्वं दिशति खलु तस्य फलमिति पुनश्च त्वं द्रष्टुं दिवि भुवि वहन् पक्षि मृगतां अदृष्ट्वा तत्खेदं कथमिह सहे शंकर विभो। दो बातें हैं, यहां द्व्यर्थक है। एक तो मैं आपके दर्शन कर न पाने के कारण उस खेद को कैसे सहन करूंगा, दूसरी बात यह है जैसे बच्चे सोए हुए होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब सोए हुए होते हैं उस समय में मां कहीं अन्यत्र चले जाती है काम में, और जब उठता है बच्चा तो रोता है, मां को नहीं देखता है तो जोर जोर से रोने लगता है कि मां कहां चली गई, मां का दर्शन नहीं हो पाता, मां को नहीं देख पाता है तो जोर जोर से रोने लगता है, व्याकुल होकर रोता है। तो इसी तरह मैं तो बालक हूं और आपका दर्शन मुझे दोबारे न मिले, इंद्र को नहीं मिला, ब्रह्मा को नहीं मिला, विष्णु को नहीं मिला, वो तो थोड़े बड़े थे सहन कर गए होंगे, मैं नहीं सहन कर पाऊंगा महाराज, आपका दर्शन न होना मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। एक तो ये, दूसरी बात बच्चे को मां जहां सुलाकर गई थी वहां यदि वापस आने के बाद उसी स्थान में बच्चा नहीं मिलता है तो बच्चे के वियोग को मां कैसे सहन कर पाएगी, और दूसरी बात बच्चा यदि दुखी होता है तो उसके दुख को ही मां अपने दुख मानती है और बच्चे के दुख को मां सहन नहीं कर सकती है। तो तुम पिता स्थानीय हो, मैं बच्चा स्थानीय हूं, और मैं यदि आपके दर्शन न कर पाने से मैं दुखी हूं तो मेरे दुख को आप कैसे सहन कर पाओगे, ये तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। इसलिए ये सब छोड़ो, मुझे अपने सपदि सुखदः मोक्ष दो। कदा वा कैलासे कनकमणि सौधे सह गणेर वसन शंभोरग्रे पुटघटित मूर्धांजलि पुटः विभो सांब स्वामिन् परम शिव पाहीति निगदन् विधातॄणां कल्पान् क्षणमिव निवेश्यामि सुखद। भक्त भगवान शिव की भक्ति में जब भगवान के भक्ति में लग जाता है तन्मयता से, उसको समय कितना व्यतीत हो गया वो पता ही नहीं चलता है। और जब जीव संसार और सांसारिक पदार्थों में विषयों में आसक्त होता है तो थोड़ा समय भी उसको ब्रह्मकल्प की तरह लगने लगता है, संसार प्रतिकूल होने लगता है तब उसको थोड़ा समय भी ब्रह्मकल्प की तरह होने लगता है। जब शिव भक्ति में उसका मन निष्ठा से लग जाता है तो ब्रह्मकल्प भी एक क्षण की तरह निकल जाता है। ये बात शंकराचार्य जी यहां कह रहे हैं। कदा वा कैलासे हे शिव, मेरे जीवन में वो अवसर वो मौका कब आएगा। रावण भी अपने स्तोत्र में तांडव स्तोत्र में यही कहता है, मेरे जीवन में वो कदा निलिंप निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम्बन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। लेकिन कल्पना ही करता रह गया, सुखी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ छोड़कर शिवा ये मंत्र का उच्चारण उसने नहीं किया। सारा विषय भोग वासना राग द्वेष छोड़कर दुष्टता, हालांकि वो खुद भी कह रहा है विमुक्त दुर्मति सदा, मेरे जीवन में ये दुर्गुण सर्वथा निकल के जावे ये अवसर कब आएगा, मेरे जीवन में वो अवसर कब आएगा जब भगवती भागीरथी के नदी के किनारे एक गुफा में बैठा हूं और झाड़ियों के बीच में बैठा हूं और नित्य निरंतर अपने दोनों हाथ सिर में जोड़ता हुआ शिव 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 ये मंत्र सतत जप करता हुआ परम आनंद का अनुभव जो होगा, कदा सुखी भवा में हम, तब जाकर मैं सुखी होऊंगा, वो अवसर मेरे जीवन में कब आएगा? रावण कल्पना ही करता रह गया, लेकिन अवसर आया नहीं। लगभग शंकराचार्य जी उसी रावण की जो भाषा है उसी शैली में बोल रहे हैं। देखो, रावण पहले है कि शंकराचार्य पहले हैं? बोलो ईमानदारी से। हाँ ठीक कह रहे हो, रावण पहले है, हो शंकराचार्य जी से भी बहुत पहले है रावण। तो लगभग वही भाषा यहां प्रयोग कर रहे हैं शंकराचार्य जी। कदा वा कैलाशे, मेरे जीवन में वो अवसर कब आएगा कि मैं कनक मणि सौधे कैलाशे, कैलाश पर्वत में मैं भी पहुंचूं, मेरा भी वहीं कैलाश पर्वत में निवास हो, कनक मणि सौधे और स्वर्णमय घर में आप जब विराजमान हो तो वहीं मैं भी विराजमान हूं, सहगणेर वसन, अपने प्रमथादि गणों के साथ आप जब कैलाश में विराजमान हो तो वहां मैं भी हूं उन गणों के बीच में, संभोर अग्रे स्फुट घटित मूर्धांजलि पुट, अपने दोनों अंजलि को हाथ को जोड़ते शेर में हाथ लगाकर आपको प्रणाम करूं, और आप आगे मेरे सामने बैठे हुए हो और उस समय मैं बार बार आपके पवित्र नामों का उच्चारण करूं, आपको संबोधन करूं, विभो सांब सर्वव्यापक हे परमात्मा, अंबा के सहित माता पार्वती के सहित सांब, स्वामीन तीनों लोक के जो मालिक हैं स्वामीन, परम शिव सबका कल्याण करने वाले, परम शिव माने मोक्ष प्रदान करने वाले, परम कल्याण तो मोक्ष में ही होगा, उसके कम में परम कल्याण नहीं होगा। भूखे को भोजन देकर भोजन देने वाला उस भूखे का कल्याण करता है कि नहीं? लेकिन वो कल्याण परम कल्याण नहीं है। रोगी को औषधि देकर औषधि देने वाला डॉक्टर उस रोगी का कल्याण करता है कि नहीं? लेकिन वो परम कल्याण नहीं होगा, क्षणिक कल्याण होगा। लेकिन परम कल्याण तो क्या है? शरीर रहते हुए शरीर के रोग को निदान करके वो परम कल्याण होगा? शरीर ही न देना ये परम कल्याण है, शरीर को ठीक कर देना ये परम कल्याण नहीं है, शरीर ही न देना ये क्या है? परम कल्याण। जीव को बनाएकर खाने का भोगने का विषय देकर उसका कल्याण करना कल्याण नहीं है, जीव को फिर दोबारे जीव भाव की प्राप्ति न कर देना ये शिव की जीव प्रति परम कल्याण है। परम शिव पाहीति निगदन, मैं उस समय एक ही शब्द में बोलता रहूं कि हे शिवा, हे परम शिवा, हे सांबा, हे स्वामीन, हे विभो, पाही मेरी रक्षा करो, मेरा कल्याण करो। ऐसा करते हुए कैलाश में विधातृणाम कल्पान, ब्रह्मा जी का जो कल्प है वह कल्प इतना लंबा समय, ब्रह्मा जी का जो एक वर्ष है हमारा कितना समय लगेगा बोलो, कल्पना कर लो। उनके एक वर्ष तक हम कम से कम हजारों बार जन्म कर मरेंगे, हजारों का लाखों बार है, लाखों बार जन्मते रहेंगे मरते रहेंगे जन्म, तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होगा है। अब उनका सौ दिन एक कल्प हो गया, ब्रह्म कल्प, ब्रह्मा का सौ दिन और वैसे ब्रह्मा जी का एक कल्प, वाह इतना लंबा समय भी भगवान शिव के चरण में शिव पाही इति करते हुए बैठते, एक सेकेंड क्षण की तरह वो बीत जाए हमको पता ही न चले, ऐसा अवसर कब प्राप्त होगा? शिव निवेश्यामि सुखता, वो भी सुखपूर्वक, वो समय जब तक प्रारब्ध है तब तक मैं कैसे रहूं है? तो ये अवसर मेरे जीवन में कब आएगा? आपकी कृपा से ही संभव है, अन्यथा और किसी प्रयत्न से वो संभव नहीं है। तो 5:30 से 7 बजे का टाइम है, बरसात का सीजन है, आप लोगों को जाने में टैक्सी मिले चाहे न मिले कहीं कुछ हो सकता है, इसीलिए तो यूं तो 5:30 से 7:30 का था तो ये विचार करके ही 5:30 से 7 बजे का रखा है, लेकिन आप लोग साढ़े पांच बजे नहीं आए। मधुसूदन जी आए हैं, चिमन आए हैं, दो चार भाई आए हैं, दो चार बहन आई है, लेकिन सभी साढ़े पांच तो नहीं आए, है ना? आए अपने अपने मन से पूछो तो ईमानदारी से है। हाँ, जो आए वो धन्यवाद के पात्र, जो ना आए वो और धन्यवाद के पात्र, क्योंकि आए तो सही, कम से कम हाजिरी लगाए, और कल से ठीक साढ़े पांच बजे आने की कोशिश करें। हम साढ़े पांच बजे शुरू करेंगे और सात बजे समाप्त करेंगे। शिवानंद लहरी भक्ति रस का भरा हुआ है और हम कोशिश यही करेंगे कि ये ऊपर से न जाए। तोम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।